अभिमन्यु ऑफिस में बैठकर इशिका के भेजे हुए डिवोर्स पेपर्स को देख रहा था। इशिका ने एलिमनी और मेंटेनेंस वाले कॉलम को उसे काफी ध्यान से पढ़ने के लिए कहा था। अभिमन्यु ने पेपर्स खोले ही थे कि तभी वहां पृथ्वी आ गया। पृथ्वी ने आते ही बताया कि उसे उनकी शादी के बारे में कुछ पता चला है। वो आगे कुछ बताता उससे पहले उसकी नज़र इशिका के भेजे हुए पेपर्स पर पड़ी तो अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगा। पृथ्वी की इस हरकत पर अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो पृथ्वी ने तुरंत खुद की हंसी को कंट्रोल करके जवाब दिया, ये लड़की सच में पागल हो गई है। इसने ये क्लॉज क्यों डलवाया है कि आप उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं? प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास है ही क्या, लोगों से लिए हुए उधार के पैसे या कुछ पार्ट टाइम जॉब? इशिका के बारे में पूरी तरह ना जानने की वजह से वो यही समझ रहे थे कि इशिका बहुत गरीब है और एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल मुश्किल से हैंडल कर पाती है। हाँ, ऊपर से मैडम ने इसे गौर से पढ़ने के लिए भी कहा है, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा। देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो यहाँ किस काम से आया था। अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में पूछा, तुम कुछ जरूरी बताने के लिए आए थे, क्या पता चला है तुम्हें हमारी शादी के बारे में? पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने आदमी से सिविल अफेयर्स ब्यूरो की फुटेज निकलवाई थी। वहां से पता चला कि वो लगभग एक महीने पहले वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रजिस्टर कराने के लिए गई थी, तभी उसे आपके साथ शादी रजिस्टर होने के बारे में पता चला है। वो इस बारे में पहले नहीं जानती थी कि आपकी और उसकी शादी हो चुकी है। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ सोच रहा था। फिर उसने कुछ पल रुककर पृथ्वी से पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ और ही लगता है, पृथ्वी ने जवाब दिया। एक पल के लिए उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। वो कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था क्योंकि अभिषिका लीगली अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु उसका डर समझ सकता था। उसने पृथ्वी से कहा, जो कहना है बिना डरे सीधे सीधे कहो। मुझे लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। वो लड़की काफ़ी मिस्टीरियस है। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ खास पता ही नहीं चला। उसे सिंघानिया हाउस छोड़े हुए 10 साल हो जाएंगे। इन 10 सालों में उसने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में ठीक से कोई नहीं जानता, खासकर पिछले 4 सालों के बारे में। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपने बारे में इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाकर नहीं रखता है। कोई उसके बारे में जानता क्यों नहीं है, ये बात मुझे और संदेह में डाल रही है। पृथ्वी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था। अभिमन्यु पृथ्वी की बताई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचने लगा। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब में कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो ऐसा क्यों कर रही होगी? उसके बारे में तो नहीं पता, पर वो लड़की बहुत शातिर है। उसकी मासूम और सीधी साधी शक्ल पर जाकर कोई भी उस पर यकीन कर सकता होगा, पर मैं नहीं करने वाला और ना ही आपको करने दूंगा, पृथ्वी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। और कुछ पता चला? हमारी शादी कब और कैसे हुई थी, इस बारे में कोई क्लू मिला? अभिमन्यु ने आगे पूछा। इशिका की तरह वो भी बेचैन था इस बारे में जानने के लिए। पृथ्वी ने ना में सिर हिलाकर कहा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है इस बारे में मिसेज राजवंश काफी कुछ जानती है। हमें उनके याद आने के इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पृथ्वी जब आया था तब ऐसे दौड़कर आया था जैसे उसे बहुत कुछ पता चल गया था, लेकिन अब उसने कुछ खास नहीं बताया था। अभिमन्यु ने उसे बोरियत भरी निगाहों से देखा। पृथ्वी उन नजरों को समझ सकता था। अभिमन्यु को गुस्सा आता था जब कोई उसका टाइम खराब करता था। पृथ्वी ने नजरें झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारी जांच जारी है, हम आज नहीं तो कल पता लगा ही लेंगे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और डिवोर्स पेपर्स के 2 प्रिंट निकाले। फिर उसने उन पेपर्स को देखते हुए पृथ्वी को पूछा, डॉक्टर अनामिका के बारे में कुछ पता चला? मैंने तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा था, पता है ना वो अल्जाइमर पर एक क्लिनिकल रिसर्च कर रही है और उसकी बनाई मेडिसिन हमारे कितने काम आ सकती हैं। बोलते हुए अभिमन्यु ने सख्त निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा, उनसे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। ऐसे लग रहा है जैसे उसने खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कर लिया है। करना ही था, आखिर इतनी बायोटेक कंपनियां उसके पीछे पड़ी थी। एक तो उसकी पहचान सामने नहीं आ रही है, ऊपर से उसकी रिसर्च की वजह से उन्हें काफी घाटा हो रहा है, पृथ्वी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। अभिमन्यु उसकी तरफ सख्ती से देख रहा था। वो बोला, तुम जानते हो ना मुझे बहाने बनाने वाले लोग पसंद नहीं है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है पृथ्वी, मुझे रिजल्ट चाहिए। ना तुम मिसिंग हानिया के बारे में कुछ खास पता लगा पाए और ना ही अनामिका से कॉन्टैक्ट हो पाया। मुझे अनामिका की बनाई दवाइयां दादी के लिए चाहिए। मैं समझ सकता हूँ सर, आपके लिए मिस अनामिका से कॉन्टैक्ट करना कितना जरूरी है। मैंने इस मामले में अपने पूरे सोर्सेज लगा दिए हैं, आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, पृथ्वी ने नजरें झुकाकर कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और जाने का इशारा किया। पृथ्वी वहां से चला गया था। वो जानता था कि उसने अपने बॉस को नाराज कर दिया है। ये सब उस इशिका सिंघानिया की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से सर का मूड एनी टाइम बिगड़ा रहता है। सोचा था उससे पीछा छूट जाएगा, पर किसे पता था कि सच में वो उनकी वाइफ निकलेगी। अब तो जल्द से जल्द डिवोर्स हो, तभी बात आगे बढ़ेगी, पृथ्वी ने मन ही मन कहा और फिर अपने काम पर लग गया था। वहीं दूसरी तरफ इशिका वसुधा के साथ थी। वो दोनों साथ में डिनर कर रही थी। इशिका ने वसुधा के लिए खास हेल्दी डिशेस बनाई थी जो काफी टेस्टी थी। वसुधा उसे टेस्ट करके बोली, पता है बहू, यही कारण है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमने अपने हाथ का खाना उस लड़के को क्यों नहीं खिलाया? कहते हैं पति के पेट का रास्ता उसके दिल से होकर गुजरता है। देखना, जिस दिन वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाएगा तो उसे तुमसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा। जी दादी, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं जरूर उसके लिए कुछ बनाऊंगी, इशिका ने मुस्कुराकर धीरे से जवाब दिया। और फिर वो मन ही मन बोली, अब आपको क्या बताऊं दादी, मैंने उसके लिए खाना बनाया था लेकिन उस अकड़ू ने मेरी तारीफ करना तो दूर मुझे कमरे से बाहर निकाल फेंका था। इस बार उसके लिए कुछ बनाने का मौका मिला तो कुछ ऐसा डाल दूंगी जिससे उसका पेट खराब हो जाएगा और तब जाकर उसकी अकड़ कम होगी। इशिका मन ही मन अभिमन्यु को कोस रही थी, तभी उसके मोबाइल पर अभिमन्यु का मैसेज आया। मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी मुझसे मिलने आओ, अभिमन्यु ने मैसेज में लिखा था। इशिका ने एक नज़र वसुधा की तरफ देखा जो खाना खाने में बिजी थी। उसने उनसे कहा, दादी मैं अभी आती हूँ, वो एक्चुअली बाहर कोई मुझसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, फिर जल्दी आना, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इशिका ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर जल्दी से बाहर गई। अभिमन्यु अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। इशिका उसके पास गई तो अभिमन्यु ने उसके हाथ में डिवोर्स पेपर देते हुए कहा, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो ताकि आगे की प्रोसेस को फॉलो किया जा सके। अभिमन्यु इशिका के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे लगा इशिका पेपर्स पे साइन नहीं करेगी और कोई बहाने बनाएगी। इसके बजाय उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पेपर साइन करके अभिमन्यु को देते हुए बोली, क्या हम कल ही इन्हें सबमिट करने जा सकते हैं? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है डिवोर्स लेने की? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर पूछा।
हाँ बिल्कुल, इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। इशिका को तलाक लेने की जल्दी इस वजह से थी क्योंकि उसे अपनी कंपनी को पब्लिक करना था। अब वो और अपनी दूसरी पहचान के पीछे छुपकर नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, फिर हम कल ही चलेंगे, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले लेना तुम, अभिमन्यु ने सख्ती से कहा। बात करते हुए अचानक उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। इशिका उसके चेहरे के बदले हुए भावों को देखकर हैरान थी। उसने पलटकर देखा तो वसुधा खड़ी थी। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि वसुधा ने उनकी बात नहीं सुनी होगी क्योंकि वो उनसे थोड़ा दूरी पर थी। अभिमन्यु और इशिका जल्दी से उनके पास गए तो वसुधा ने अपनी चेस्ट को पकड़ रखा था। वो गहरी तेज सांसें लेते हुए बोली, तुम दोनों तलाक ले रहे हो? इतना कहकर वो धड़ाम से गिर पड़ी। लगता नहीं दादी के रहते इतनी आसानी से तलाक हो पाएगा। दादी इन दोनों को करीब लाकर ही रहेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, आप बहुत सपोर्ट करते हो, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।